ये आकाशवाणी है। अब आप प्रशांत कुमार से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र के रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में मूसलाधार वर्षा के बाद चट्टाने खिसकने से सड़कें बंद हो गईं और राहत अभियान जारी है। इस त्रासदी में दो बच्चों और एक वृद्ध सहित तीन लोगों की मृत्यु हो गई। 100 से अधिक लोगों को बचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि रामबन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में ओला पड़े और कई स्थान पर भूस्खलन भी हुआ। अचानक आई बाढ़ से रामबन में कई भवन ढह गए और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुलबीर सिंह ने बताया कि सभी संस्थाएं एकजुट होकर राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल सुबह रामबन जिले में लगातार बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल जमीनी स्तर पर स्थिति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग मुगल रोड वाहनों के आवागमन के लिए फिर से खोल दिया गया है। ताजा बर्फबारी के कारण एक दिन बंद रहने के बाद राजमार्ग को केवल पुंछ से शोपियां की ओर जाने वाले हल्के मोटर वाहनों के लिए खोला गया है, लेकिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी SSG रोड और सिंथन रोड अभी भी बंद है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि भारी बारिश के मद्देनजर आज घाटी के सभी स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खराब मौसम और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया है। कश्मीर घाटी में पिछले 48 घंटों से भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और अधिक बारिश होने का अनुमान लगाया है। लद्दाख में शनिवार से भारी बर्फबारी और ओले गिरने के कारण पर्वतीय परिषद ने सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्यालसन ने सभी प्रमुख अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपदा कार्रवाई दल को भी सतर्क रखा गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance आज सुबह भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस, उनके बच्चे और अमेरिका के कई वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। अपनी यात्रा के दौरान श्री वेंस आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली में अन्य कई कार्यक्रम भी होंगे और अमेरिका वापस लौटने से पहले उनका जयपुर और आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर जेद्दा जाएंगे। पिछले 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की वाणिज्यिक केंद्र की यह पहली यात्रा होगी। श्री मोदी की यह यात्रा भारतीय सऊदी संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाती है। भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराने संबंधों पर आधारित मजबूती और बहुमुखी आर्थिक साझेदारी है। सऊदी अरब भारत का 5वां और भारत सऊदी अरब का 2रा सबसे व्यापार भागीदार है। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री की जेद्दा यात्रा से भारत और सऊदी अरब के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT पहल से आई पारदर्शिता से 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। भारत की DBT प्रणाली का मात्रात्मक मूल्यांकन शीर्षक के एक नीति पत्र का हवाला देते हुए श्री वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे लाभार्थियों की कवरेज में 16 गुना वृद्धि भी हुई है। रुद्राक्ष पाटिल और आर्य बोरसे की जोड़ी ने पेरू की राजधानी लीमा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी में रजत पदक जीता। कल लास पाल्मा शूटिंग रेंज में स्वर्ण पदक के लिए हुए मैच में रुद्राक्ष और आर्य की जोड़ी को नॉर्वे के जॉन हरमन हेग और जीनेट हेग डोस्टेड की जोड़ी से 11-17 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।